एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम आते ही जहन में बड़ी बड़ी तस्वीरें बनती हैं, विशाल दौलत, एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य और हाँ, शायद थोड़े विवाद भी। हम बात कर रहे हैं जॉन डी रॉकफेलर सीनियर की।
जी हाँ,
और हमारी इस गहरी चर्चा का आधार है रॉन चरणों की बेहद प्रशंसित जीवनी टाइटन।
बिल्कुल, और ये नाम रॉकफेलर, ये सिर्फ अमेरिका के पहले अरबपति या स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक का ही नहीं है, मतलब ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
सही,
उनकी कहानी में वो सारे बड़े सवाल हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। धन कैसे कमाया जाए, उसकी नैतिकता क्या हो, ताकत का इस्तेमाल कैसे हो, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सब कुछ उनकी जिंदगी में गुंथा हुआ है।
और वान चर्मो, जिन्होंने ये किताब लिखी है, वो इसके लिए शायद सबसे सही व्यक्ति हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, वित्तीय इतिहास और जटिल इंसानों की परतें उधेड़ने में माहिर हैं।
हाँ, और चेरनो की खास बात ये है कि वो रॉकफेलर को बस एक विलेन या एक हीरो की तरह नहीं देखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे पेश करते हैं जिसने अमेरिकी पूंजीवाद और यहाँ तक कि दान देने के तरीकों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। एक कह सकते हैं परिवर्तनकारी शक्ति।
जी, उनकी किताब इसी जटिलता को, इन विरोधाभासों को सामने लाती है कि कैसे एक ही आदमी इतना निर्मम कारोबारी भी हो सकता है और इतना बड़ा परोपकारी भी।
बिल्कुल, और यही समझना आज हमारा मकसद है कि ये दोनों पहलू एक ही शख्सियत में कैसे मौजूद थे।
तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। रॉकफेलर का जन्म हुआ 1839 में और उनका बचपन कोई बहुत शांत या व्यवस्थित नहीं था, काफी उथल पुथल वाला था।
उनके पिता विलियम डेविल बिल रॉकफेलर एक दिलचस्प किरदार थे। मतलब वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे, अक्सर घर से गायब, और उनकी ईमानदारी पर भी सवाल उठते थे।
हाँ, धोखेबाज किस्म के।
जी, पिता की ये गैर मौजूदगी, ये अविश्वसनीयता, इसने युवा जॉन पर गहरा असर डाला। उनके अंदर एक तीव्र इच्छा जगी सम्मान पाने की और खासकर आर्थिक सुरक्षा की।
लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा चेरनो बताते हैं, कि जॉन ने अपने पिता से कुछ सीखा भी, मोलभाव करने की कला, हर चीज का हिसाब रखने का महत्व।
हाँ, भले ही पिता के तरीके ठीक ना हो, पर जॉन ने उनसे ये हुनर सीख लिए, जैसे कोयले की खान से हीरा निकाल लिया हो।
और दूसरी तरफ उनकी माँ थीं एलिजा डेविसन रॉकफेलर, वो बहुत धार्मिक थीं, सख्त बैप्टिस्ट।
जी, और उन्होंने जॉन में अनुशासन, बचत और एक तरह की धार्मिक कर्तव्य निष्ठा भरी।
तो ये दोनों प्रभाव, पिता से मिली दुनियादारी और माँ से मिला अनुशासन, ये मिलकर एक खास तरह का व्यक्तित्व बना रहे थे।
और व्यवस्था के प्रति उनका लगाव शुरू हुआ और उनका वो मशहूर बही खाता लेजर ए।
हाँ, लेजर ए, जिसमें वो हर पैसे का हिसाब रखते थे।
जी,
वो सिर्फ एक खाता नहीं था, वो उनकी पूरी सोच का प्रतीक था, हर चीज नियंत्रण में, हर चीज व्यवस्थित।
फिर वो कमीशन व्यापारी बने और तब उनकी नजर पड़ी तेल के कारोबार पर, जो उस वक्त तेजी से बढ़ रहा था।
लेकिन यहाँ भी उनका नजरिया अलग था। ज्यादातर लोग तेल निकालने, मतलब ड्रिलिंग में लगे थे, जो जोखिम भरा था। रॉकफेलर ने रिफाइनिंग यानी तेल साफ करने पर ध्यान दिया। उन्हें लगा ये ज्यादा टिकाऊ बिजनेस है, इसे बढ़ाया जा सकता है।
यही उनकी मुलाकात सैमुअल एंड्रूज से हुई, जो एक अच्छे केमिस्ट थे, और साझेदारी शुरू हुई। और यहीं से रॉकफेलर की वो खासियत दिखने लगी जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया, हर काम को बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से करना।
हाँ, मतलब रिफाइनिंग की प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाना, लागत कम करना, यहाँ तक कि जो वेस्टेज होता था उससे भी मुनाफा निकालना।
बिल्कुल, उनकी सोच साफ थी, कॉम्पिटिशन यानी होड़ करना बेकार है, इससे बर्बादी होती है।
अच्छा,
सबसे अच्छा है कि एक कुशल मैनेजमेंट के तहत सबको एक साथ लाया जाए, एकीकरण, कंसोलिडेशन।
और इसी सोच से बनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। और फिर आया वो साल 1872 और वो घटना जिसे क्लीवलैंड नरसंहार कहते हैं।
हाँ, क्लीवलैंड मैसेकर, ये कोई खून खराबा नहीं था बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी।
बहुत तेज, बहुत निर्मम।
जी, सिर्फ एक महीने में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड के 26 में से 22 तेल रिफाइनरों को अपनी कंपनी में मिला लिया या खत्म कर दिया।
ये कैसे किया उन्होंने?
चेरनो बताते हैं, हर तरीका अपनाया गया, वित्तीय दबाव डाला, रेल कंपनियों से गुप्त छूट ली जिसे रिबेट्स कहते थे।
मतलब स्टैंडर्ड ऑयल को माल ढुलाई सस्ती पड़ती थी दूसरों के मुकाबले।
बिल्कुल, और जरूरत पड़ी तो प्रेडेटरी प्राइसिंग भी की, मतलब दाम इतने गिरा दिए कि कॉम्पिटिटर टिक ही ना सके।
यहाँ तक कि कॉर्पोरेट जासूसी की भी बातें हैं।
हाँ, कुछ मामलों में उनका मकसद साफ था, तेल के पूरे बिजनेस पर कंट्रोल।
इसे समझने के लिए दो शब्द आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन।
जी, वर्टिकल यानी तेल निकालने से लेकर बेचने तक पूरी चेन अपने हाथ में, और हॉरिजॉन्टल यानी अपने जैसे दूसरे सारे रिफाइनरों को खरीद लेना।
और इस पूरे कंट्रोल को एक कानूनी शक्ल देने के लिए 1882 में बनाया गया स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट।
ये उस समय के लिए बहुत नई चीज थी, एक ऐसा ढांचा जिसने दर्जनों कंपनियों को एक साथ एक कंट्रोल में ला दिया बिना ये साफ दिखे कि मालिक कौन है।
इसने उनके एकाधिकार, उनकी मोनोपोली को बहुत मजबूत कर दिया।
लेकिन इतनी बड़ी ताकत ज्यादा दिन छुप नहीं सकती थी।
सही बात है, जल्दी इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी।
हाँ, खासकर इडा टारबिल जैसी पत्रकारों ने।
उनकी एक पूरी सीरीज आई थी, द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी,
और उसने तो जैसे तहलका मचा दिया, स्टैंडर्ड ऑयल के सारे तरीकों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया।
जी, उस रिपोर्टिंग ने जनता में गुस्सा भर दिया और अमेरिका में एंटी ट्रस्ट मूवमेंट यानी एकाधिकार विरोधी आंदोलन को बहुत बल मिला।
सरकार पर दबाव बढ़ा
और यहाँ रॉकफेलर का वो बहुत ज्यादा गुप्त रहने वाला स्वभाव उनके खिलाफ गया।
हाँ, वो आलोचना के लिए तैयार नहीं थे। जब कोर्ट में गवाही देनी पड़ी तो वो बहुत हिचकिचाए, जिससे उनकी छवि और खराब हुई।
पर इन सबके बावजूद स्टैंडर्ड ऑयल का दबदबा तो कायम रहा काफी समय तक।
जी, लेकिन आखिरकार 1911 में यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया,
स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट को तोड़ने का आदेश, उसे कई छोटी कंपनियों में बांटने का।
ये रॉकफेलर के लिए एक बड़ी कानूनी हार थी।
लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ आता है।
हाँ, विडम्बना देखिए, कंपनी टूट गई लेकिन रॉकफेलर की अपनी दौलत कम होने के बजाय और बढ़ गई।
कैसे?
क्योंकि जो नई कंपनियां बनी उनके शेयर की कीमतें आसमान छूने लगी और रॉकफेलर के पास उन सबके शेयर थे।
अच्छा।
और यहीं से, जैसा चरणों कहते हैं, रॉकफेलर की जिंदगी का दूसरा बड़ा अध्याय शुरू होता है, शायद पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली,
परोपकार का, फिलांथ्रोपी का।
जी, अपने सलाहकार फ्रेडरिक गेट्स के साथ मिलकर उन्होंने दान देने का तरीका ही बदल दिया।
गेट्स ने उन्हें समझाया कि सिर्फ यूं ही पैसे बांटने से काम नहीं चलेगा।
हाँ, जरूरत है एक व्यवस्थित, एक वैज्ञानिक नजरिए की। दान वहां दिया जाए जहां वो समस्या की जड़ पर असर करे, जिसके लिए बाकायदा रिसर्च हो।
इसे ही साइंटिफिक फिलांथ्रोपी कहा गया।
बिल्कुल, ये सिर्फ दया नहीं थी, ये समस्याओं को सुलझाने का एक सोचा समझा तरीका था।
और इसी सोच से ही उन्होंने बड़े बड़े संस्थान खड़े किए, शिकागो विश्वविद्यालय,
रॉकफेलर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी, हुकवर्म जैसी बीमारियों को खत्म करने में मदद की,
जनरल एजुकेशन बोर्ड जिसने अमेरिका के साउथ में शिक्षा का स्तर सुधारा,
और रॉकफेलर फाउंडेशन जो आज भी दुनिया भर में काम कर रहा है।
उन्होंने अपनी जिंदगी में 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा दान दिया, आज के हिसाब से तो खरबों डॉलर होंगे।
जी, और जिस तरह उन्होंने दान दिया वो तरीका उतना ही नया था जितना उनका बिजनेस बनाने का तरीका। इसने मॉडर्न फिलैंथ्रोपी की नींव रखी।
तो अगर हम रॉकफेलर की मूल सोच, उनके मूल्यों को समेटना चाहें तो क्या चीजें सामने आती हैं? एक तो साफ है व्यवस्था, कुशलता और नियंत्रण का जुनून।
हाँ, ये तो उनकी रग रग में था, और साथ में अपने मकसद पर, अपनी धार्मिकता पर एक अटूट विश्वास।
वो मानते थे कि पैसा कमाने की उनकी यह काबिलियत ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है।
जी, और इसलिए इसे मानवता की भलाई में लगाना उनका फर्ज है। उनकी असली प्रतिभा चीजों को व्यवस्थित करने में थी, प्लान बनाने में।
उनकी वो कहावत भी है, सामान्य कामों को असाधारण रूप से अच्छी तरह करो।
बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना, हर प्रक्रिया को सुधारना। और कंपटीशन को लेकर उनका नजरिया तो बहुत ही अलग था।
वो उसे बर्बादी मानते थे, ये एक पाप।
हाँ, उनका मकसद था तेल के बिखरे हुए उद्योग में व्यवस्था लाना, और फिर उस व्यवस्था से जो दौलत आए उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करना।
लेकिन यहीं पर वो गहरा विरोधाभास भी है जिसके बात हम कर रहे थे।
जी,
एक तरफ गहरी धार्मिक आस्था, निजी जीवन में सादगी, बचत,
और दूसरी तरफ बिजनेस में ऐसे तरीके जिन्हें दुनिया क्रूर मानती थी, और इतनी ज्यादा दौलत जमा करना।
चेरनोज के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, विभाजित नैतिकता, कंपार्टमेंटलाइज्ड मोरालिटी।
हाँ, जैसे जिंदगी के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग नियम हो।
वो ये भी मानते थे कि बिजनेस में टिके रहना योग्यतम की उत्तरजीविता जैसा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
हाँ, जो सबसे कुशल है वही आगे बढ़ेगा, और लोगों से काम लेने की कला को वो बहुत अहम मानते थे। कहते थे ये खरीदी जा सकने वाली चीज है और वो इसकी सबसे ज्यादा कीमत देंगे।
और उन्हें अपनी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड देखना बहुत पसंद था।
जी, क्योंकि वो उनके बनाए सिस्टम के सही चलने का सबूत था, एक तरह की पुष्टि थी।
रॉकफेलर की जिंदगी बहुत लंबी थी, बहुत सारी घटनाएं हुई। अगर तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो जिन्होंने उनकी कहानी बदल दी तो वो क्या होंगे?
पहला तो यकीनन 1872 का वो क्लीवलैंड नरसंहार ही है।
हाँ, वो तो था ही।
वो इसलिए निर्णायक था क्योंकि उसने रॉकफेलर को रातों रात इंडस्ट्री का किंग बना दिया। उनकी निर्मम कुशलता, उनकी दूर की सोच सब दुनिया ने देखी। एकाधिकार की राह पर वो पहला बड़ा कदम था।
दूसरा मोड़ मेरे ख्याल से इडा टार्बल का वो पर्दाभाश और उसके बाद जो जनता का गुस्सा भड़का वो होगा 1900 के दशक की शुरुआत में।
सही, वो इसलिए अहम था क्योंकि उसने रॉकफेलर की सार्वजनिक छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया, एंटी ट्रस्ट आंदोलन को हवा दी और आखिरकार सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी।
उनकी वो गोपनीयता की दीवार टूट गई।
बिल्कुल, वो अमेरिका के सबसे नापसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे उस वक्त।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मोड़ था फ्रेडरिक गेट्स के साथ उनकी साझेदारी और परोपकार की तरफ उनका वो व्यवस्थित कदम जो 1890 के दशक के आखिर में शुरू हुआ।
गेट्स ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया।
जी, पारंपरिक दान से हटकर बड़े पैमाने पर रणनीतिक तरीके से समाज सेवा करने का रास्ता।
ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था?
क्योंकि इसने सिर्फ मॉडर्न फिलैंथ्रोपी को ही नहीं बदला, इसने ऐसे संस्थान बनाए जिनका असर आज तक है, यूनिवर्सिटी, मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, और इसने रॉकफेलर की विरासत को भी बदला, सिर्फ लुटेरे बैरन से आगे बढ़कर एक महान परोपकारी की छवि बनाने में मदद की।
ये उनके जीवन का दूसरा अध्याय था जिसने कहानी को पूरा किया।
बिल्कुल।
तो रॉकफेलर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? इंसान के स्वभाव की जटिलताओं के बारे में ये कहानी क्या कहती है?
शायद सबसे बड़ी बात यही है कि एक ही इंसान में एक्सट्रीम कारोबारी सख्ती और उतनी ही बड़ी उदारता कैसे साथ साथ रह सकती है। मतलब लोगों को सिर्फ अच्छा या बुरा कहना कितना आसान है, पर असलियत ज्यादा पेचीदा होती है।
और अनुशासन, व्यवस्थित सोच, इसकी ताकत तो साफ दिखती है, चाहे बिजनेस हो या दान।
जी, लेकिन साथ ही ये भी कि अपनी छवि, लोगों की धारणा, ये कितना मायने रखती है। रॉकफेलर का हद से ज्यादा गुप्त रहना उनके लिए ठीक नहीं रहा आखिर में।
ये भी सोचने वाली बात है कि लोग अपने अंदर के विरोधाभासों से कैसे डील करते हैं, जैसे अपनी आस्था और अपने काम, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं।
हाँ, और ये भी कि बिजनेस की नैतिकता, समाज की उम्मीदें, ये वक्त के साथ बदलती हैं। जो 1870 में ठीक लगता था वो 1900 तक आते आते अस्वीकार्य हो गया।
और अंत में ये कहानी महत्वाकांक्षा की भी है कि वो जिंदगी को कैसे दिशा देती है, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। और ये सवाल कि जब आप बहुत सफल हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है?
जी, एक साम्राज्य बनाना अलग बात है और उसे समाज को वापस देने का तरीका सोचना बिल्कुल अलग।
तो इस पूरी चर्चा से अगर तीन मुख्य बातें निकालनी हो जो रॉकफेलर के जीवन और चेरनों की किताब से मिलती हैं।
पहली शायद एक धावरापक बात, बचपन के अनुभव कैसे जीवन भर साथ चलते हैं। पिता से मिली असुरक्षा, माँ से मिला अनुशासन, इसने शायद नियंत्रण और सम्मान की एक ऐसी प्यास जगाई जो कभी बुझी नहीं।
ये सोचना कि वो अपनी आस्था और अपने बिजनेस तरीकों के बीच कैसे संतुलन बनाते होंगे, ये भी एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है।
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, वो है व्यवस्थित सोच और कार्यकुशलता की ताकत। रॉकफेलर ने इसे पहले स्टैंडर्ड ऑयल जैसा विशाल साम्राज्य बनाने में लगाया
और फिर ठीक उसी तरह आधुनिक परोपकार की नींव रखने में।
जी, एक ही सिद्धांत का दो अलग अलग क्षेत्रों में अद्भुत इस्तेमाल।
और तीसरी एक सार्वभौमिक सीख जो शायद हम सबके लिए है, सफलता अक्सर सामान्य कामों को असाधारण लगन से करने में छिपी होती है।
बिल्कुल, डू द कॉमन थिंग्स अनकॉमनली वेल, इसके साथ दूर की सोच और बदलते वक्त के साथ ढलने की जरूरत भी है।
लेकिन असली विरासत तब बनती है जब इंसान पैसे से आगे बढ़कर समाज पर अपने असर के बारे में सोचता है।
सही कहा, रॉन चर्नो की टाइटन हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास सीधा नहीं होता और महान लोग अक्सर विरोधाभासों से भरे होते हैं। रॉकफेलर की विरासत पर बहस आज भी चलती है और ये बहस असल में पूंजीवाद, परोपकार और शक्ति पर हमारी अपनी समझ को ही दिखाती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।